تفسير. آپ دیکھیں گی کہ ان آیات میں آپ منکرین کے رویے کو اور ان کے کردار کو پڑھیں گے، وہ لوگ جو توحید کا انکار کرتے ہیں، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کی تصویر کشی کی ہے، منظر کشی کی ہے. افرائیتا، آیت کا انداز بڑا ہی زبردست ہے. آ کیا، فا پس، رئیتا، رعا سے ہے، یہ کسی کی حالت پر تعجب یا افسوس کے ساتھ توجہ دلانے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا اردو میں، ذرا فلاں کو تو دیکھو، بھلا تم نے فلاں کو دیکھا، تو کسی کی حالت پر تعجب کرنا، افسوس کے ساتھ توجہ دلانا. اور یہاں پر اللہ رب العزت یہودیوں کی حالت پر تعجب کے ساتھ توجہ دلا رہے ہیں. ہر اس شخص کی حالت پر تعجب اور افسوس کے ساتھ توجہ دلا رہے ہیں. من اتخذ الہہ ہواہ، نمبر ایک، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. افرائیتا، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو، کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا، بھلا دیکھ تو سہی اس شخص کی طرف جس نے ٹھہرا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا. اتخذ، یہاں پہ اتخذ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے بنا لیا ہے، اس نے ٹھہرا لیا ہے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا. اب آپ دیکھیں کہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا ہے توحید کے اور قیامت کے جو دلائل ہیں، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کو ایک خدا مانا جاتا، ایک اللہ کی کبریائی پر، خالقیت پر، حاکمیت پر ایمان لایا جاتا. تو خواہش نفس کو خدا بلا لینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی خواہش نفس کا بندہ بن کر رہ جائے. خواہش نفس کو کیسے خدا بنایا جاتا ہے؟ جیسے جس کام کو دل چاہے اسے کر گزرنا، خاللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہو، اور جس کام کو دل نہ چاہے اسے نہ کرنا، خاللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہو. جب کوئی آدمی اس طرح اطاعت کرنے لگے تو اس کے معنی ہے کہ اس کا معبود خدا نہیں ہے بلکہ وہ جس کی اطاعت کر رہا ہے. ابن جریر رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا، جس چیز کی نفس نے خواہش کی اس کا ارتکاب کر گزرا، نہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کیا، نہ اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال کیا. ابوبکر جساس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جیسے کوئی خدا کی اطاعت کرے. استغفر اللہ. زمخشری، یہ بھی مفسر قرآن ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ وہ خواہش نفس کا نہایت فرما بردار ہے، جدھر اس کا نفس اسے بلاتا ہے اسی طرف وہ چلا جاتا ہے، گویا وہ اس کی بندگی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے خدا کی بندگی کرے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور فاجر وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چھوڑ دے اور اس کے باوجود اللہ سے آخرت کی بھلائی کی تمنا کرے. تو عقل مند کون ہے؟ جو اپنی خواہش نفس کی پوجا نہیں کرتا، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. کیونکہ خواہش نفس جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، خواہش نفس اپنا غلام بنا لیتی ہیں. ख्वाहिशें नफ्स कहती हैं कुरान की कोई ज़रूरत नहीं है, शरीयत को छोड़ दो, उसको पीठ के पीछे फेंको, बिदतों को, रस्म व रवाज को, ख्वाहिशात को, बस इसके बंदे बन जाओ, अल्लाह के अहकामात की कोई परवाह ना करो, और ख्वाहिशात के अंदर ही फिर उन्हें खैर और फलाह नज़र आती है। आप सूरत अल-बकरा में भी इसकी तफसील जो है वो पढ़ चुकी हैं। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारी बीमारी जो है तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात हैं, हाँ अगर तुम इनकी मुखालफत करो तो ये बीमारी ही तुम्हारी दवा भी है। अफ़ारईत मन इत्तख़ज़ा इलाहु हवा, फिर क्या तुमने उस शख्स के हाल पर भी गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। तो आप अपना मुहासबा करें, आप अपना जायज़ा लें कि अमली ज़िंदगी में कहीं आप अपने ख्वाहिश को माबूद तो नहीं बनाती, क्योंकि अगर वो लोग क्योंकि वो लोग जो ख्वाहिशात को अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकाम देते हैं, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सोचते हैं, ख्वाहिश के मुताबिक अमल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बस जो उनका दिल चाहता है वो करते चले जाते हैं। इस वो ऐसे बदकिस्मत लोग हदायत के दरवाजे अपने लिए बंद कर लेते हैं, ऐसे बदकिस्मत लोग कुरान और सुन्नत जो है वो उसके करीब नहीं आते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ऐसे शख्स की हालत पर अफसोस कर रहे हैं, और ये जो है वो अहले किताब में से यहूदी भी हो सकते हैं, और ये अहले मक्का भी हो सकते हैं, और ये आज के दौर के वो तमाम लोग हो सकते हैं जो कुरान और सुन्नत को पसे पुष्ट डालकर वो अपनी ख्वाहिशात रस्म और रवाज और बिद्दतों के बंदे बन गए। मसलन आप देखें कि ये 2-4 दिन पहले ही एक औरत का सवाल था कि हमारे ऊपर तो कर्ज है, तो इसका ये मतलब है कि जो जिस पे कर्ज होता है तो फिर इसका मतलब हम ज़कात तो नहीं दे सकते, और फिर हज भी हम पे फ़र्ज़ नहीं है। तो जब उससे पूछा गया कि आपके ऊपर कर्ज़ किस चीज़ का है, तो पता चला कि जैसे सूद का कारोबार है, बिजनेसमैन है, तो बहुत सा वो वक्तन फक्तन फिर वो कर्ज सूद मज़ीद मतलब अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लेते रहते हैं, या सूद पर घर किराए पर लिया हुआ, सूद पर घर जो है वो लिया हुआ है, तो अब जाहिर है कि वो तो बैंक से बहुत बड़ा कर्ज होता है, तो अब ये कि अब हम ये काम नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए कि हराम कब जायज़ होता है, जब इंसान मौत के करीब होता है, मरने के करीब होता है ना, तो हराम जायज़ होता है। तो क्या ये कर्ज़ की वो नौईयत है, ये हराम खाने की वो नौईयत है? फिर आप देखें कि मसलन औरतों के पास अगर जेवर है 7.5 तोले से ज़्यादा, तो उस पर ज़कात है। अब औरतें क्या कहती हैं कि मैं जो हूँ मैं दे नहीं सकती, मेरी हैसियत नहीं है। जैसे 2-3 दिन पहले भी एक औरत पूछ रही थी कि मेरे पास 50 तोले सोना है, इतना या इससे ज़्यादा, तो अब मैं मुझे क्या करना चाहिए, तो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ज़कात दे सकूँ, तो अगर मेरा शौहर नहीं देता तो कौन ज़िम्मेदार है, कौन गुनाहगार है? तो जेवर तो आपका है ना, शौहर अगर देता है तो उसकी नेकी है, वरना मलकियत तो आपकी है। तो अब आपको अगर शौहर देता है तो अच्छी बात है, वरना आपको उस जेवर की ज़कात देनी है। पैसे नहीं है तो उस जेवर में से आप दे दें, अंगूठी दे दें, कड़ा दे दें, बुंदे दे दें, जितनी आपकी ज़कात बनती है, तो उतनी मालियत के वो पैसे दिए जा सकते हैं। फिर इसी तरह जैसे नमाज का वक्त है और आप कहती हैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं थोड़ा सा बस आराम कर लूँ, थोड़ा सा सस्ता लूँ, अब ख्वाहिश नफ्स की बात मानी और नतीजा क्या निकला, नमाज तो कज़ा हो गई, क्योंकि नमाज का बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं होता। या बाज़ औक़ात आप कहती हैं कि अच्छा मैं तैयार हो चुकी हूँ, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, मेरे कपड़ों पर छींटे ना पड़ जाएँ, मेरा वज़ू मुझे फिर से करना पड़ेगा, पार्टी में है, महफिल में है। अच्छा चलो, कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो वज़ू करके भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग घर से निकलते हुए वज़ू करके गए हैं, लेकिन आप अपने दिल को ये कह के तसल्ली देती हैं कि अच्छा चलो फिर देखते हैं घर जाके, अच्छा चलो फिर बाद में, अच्छा फिर इकट्ठी करके पढ़ लूंगी। तो ये क्या है, ये ख्वाहिश नफ्स की पाबंदी है। सूरत मुदस्सिर में है ना कि जहन्नमी जहन्नमी जब जहन्नुम में जाएंगे, फरिश्ते उनसे पूछेंगे, मा सलाककुम फी सकर, कालू लम नकु मिनल मुसल्ली, कि क्या चीज़ तुम्हें जहन्नुम में ले आई। तो वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। फिर आप देखें कि आप जो हैं, आपके घर में कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आप देखें कि मेरे हालात कैसे हैं, मेरे शोहर की तनख्वाह कितनी है, और आप अपनी चादर को देखते हुए पांव फैलाएं। लेकिन आप क्या चाहती हैं कि फलां दोस्त ने बहुत बड़ी पार्टी की थी, तो ज़माना मेरी पार्टी को याद रखे, तो मैं तो वैसी पार्टी करूँगी। तो आप अपने शोहर को तंग करती हैं, मुतालबात करती हैं, ये बात सही तो नहीं है ना। तो अपनी अपने चादर को देखते हुए पांव फैलाने चाहिए, कनात की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। जब हाथ को एक दफ़ा फैलाने की आदत पड़ जाए ना, फिर जो है वो हाथ को अंदर डालना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने जो कुछ नवाजा है और बहुत कुछ दिया है, उस पे शुक्रगुजारी होनी चाहिए, और कनात के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। फिर आप देखें कहीं आप ऐसा तो नहीं करती कि आपकी ये आदत बन चुकी है कि हर वक्त रोना धोना, शिकवे शिकायत। मसलन खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी है, घर के अंदर जॉब नहीं है, बच्चों की कोई आजमाइश है, और कोई भी बात हो सकती है, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला अपने प्यारों को आजमाइशों से जो है वो आजमाता है, आजमाइश की भट्टी में डालता है। देखना ये चाहता है कि कौन जो है इन आजमाइशों के अंदर सब्र करता है, कौन शुक्र करता है, कौन अल्लाह के करीब होता है, कौन कुंदन बन जाता है, और किसके अंदर निफाक और मुनाफ़क़त पाई जाती है। और बाज़ औक़ात बाज़ लोगों की ये आदत बन जाती है हर वक्त शिकायत, हर वक्त अपने मसाइल का रोना रोना। तो ये क्या है, ये भी एक नशुक्री है। क्योंकि बाज़ औक़ात औरतें और मर्द जो हैं क्या करते हैं कि उनकी ख्वाहिशात की एक लंबी फहरिस्त होती है जो कभी पूरी नहीं होती। पहले इसलिए रो रहे थे कि एक कमरे का घर है, कब मेरे मियाँ मुझे दो कमरे का घर लेके देंगे। अच्छा दो का ले दिया, अब कहते हैं कि सामान भी पूरा नहीं आ रहा, कहाँ रखूँ, कब आप तीन कमरे का घर लेंगे, कब आपकी तनख्वाह अच्छी होगी, कब आपको अच्छी जॉब मिलेगी, मेरी तो किस्मत फूट गई। अब वो एक कमरे से घर के तीन पे आप आ गए हैं, फिर भी आप जो है वो मुतमिन और खुश नहीं है ना। और अच्छा अब चार या पांच का भी मिल जाए और फिर क्या कहते हैं कि मेरा अपना घर कब होगा। अच्छा लाहौर में तो है लेकिन कराची में कब होगा, कराची में तो है इस्लामाबाद में कब होगा। फिर पहले घर की फिक्र थी, फिर उसके बाद उसके अंदर सामान रखने की फिक्र है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे रहते हैं तो अब यहाँ पे हसरत से देखते हैं। जब घरों के पास से गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती है, तो खोए खोए से हैं। किसी के घर गए हैं तो आप अपना दिल वहीं नकद जो है वो दे कर आ गए हैं। आपकी ख्वाहिशात की एक फहरिस्त है जो कभी जो है वो पूरी नहीं होती। तो आप हैं या मैं हूँ, हम सब मुसलमानों को इस बात पे सोचना चाहिए कि मेरी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ, मेरी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मुझे अपनी ख्वाहिशात नफ्स को लगाम देनी है, मेरी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मुझे अपने रब को राज़ी करना है, मेरी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे हलाल पर कनात करनी है, मेरी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे जो है वो फ़राइज़ की पाबंदी करनी है, हकूकुल इबाद अदा करने हैं, हकूक अल्लाह अदा करने हैं, मेरी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैंने अपने रिश्तेदारों से क़त ताल्लुक़ ही नहीं करनी, मैंने उनको मनाना है, जो रूठे हैं उनको मनाना है, जो मुझे नहीं बुलाता मैंने उनको बुलाना है, और इस मौके की तलाश में रहना है, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा वाक़या कि मैं जाऊं और उसको मना लूं जो मुझसे रूठा हुआ है। तो मोमिन जो है वो ये नहीं कहता चलो अच्छा है, वो पहले भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, चलो अच्छा हो गया, अब मेरे मियाँ उनको पसंद नहीं करते या उनके पास नहीं जा रहे, मेरी भी जान छूट गई, चलो अब उन्होंने खुद ही पहल कर ली, उन्होंने हमारे हमने दावत दी थी, उन्होंने कबूल नहीं की, चलो ठीक है हम अब उनसे नहीं मिलेंगे। फिर ये कि ख़ानदान के रस्म व रवाज हैं, ये मेरी दादी करती थी, ये मेरी अम्मी करती थी, और ये मेरे जो है वो सास करती थी, और ये तो मेरा दिल बहुत चाहता है। अब आप देखें शादी के मौके पर बहुत सी बेहुदा रस्में हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसमें आप देख लें मिक्सिंग है, फिर उसमें दुल्हन को सारे लोगों के दरमियान मर्दों के दरमियान सजा कर बिठा देना है, फिर इसी तरह ये दूध पिलाना और पता नहीं घुटना बांधना और फिर वो रास्ता रोकना और देवर का दुल्हन की गोद में बैठना और न जाने अनगिनत किस्म की जो हैं वो बहुत सी रस्में हैं। और लड़की वाले जब करते हैं तो लड़के वाले कहते हैं, जब दुल्हन घर आती है तो कहते हैं कि अच्छा अब हम भी मज़ा चखाएंगे। तो बहुत औकात में ऐसा होता है कि ऐसी रस्मों पर ही आपस में इब्तदा में ही जो है वो हालात ख़राब होने लगते हैं। तो साफ़ सुथरे तरीके से तकवा के साथ हमें जो है वो नई ज़िंदगी की इब्तदा करनी चाहिए और शादियों को रवाज देना चाहिए। और शादी तो दूल्हे की दुल्हन से हो रही है, ना कि वो बाकी बहुत सी लड़कियां और बहुत से लोग जो कि हंसी ठट्ठा मजाक और हंसी खेल में उधर से दूल्हे के दोस्त आ जाते हैं, इधर से दुल्हन की दोस्तें होती हैं, बहनें होती हैं, और एक अजीब जो है वो हंसी गपशप और खुराफात का एक माहौल पैदा होता है। तो प्यारी बहनों, ख्वाहिशात को अगर आप जो है वो समेटेंगी नहीं और अगर आप उनको लगाम नहीं देंगी तो इनका कोई एंड नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं, नंबर एक, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया? तो ये मलामत है, ये अफसोस है, क्योंकि ऐसा शख्स कुरान और सुन्नत को पीछे छोड़े बैठा है, ऐसा शख्स किताब और शरीयत को पीठ पीछे फेंक चुका है और अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। नंबर दो, वा अदल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, और अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसे गुमराही में फेंक दिया। कि अल्लाह ने तो उसको इल्म दिया था, उसको आलिम बनना चाहिए था, और आलिम कौन होते हैं? इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, के बेशक इल्म रखने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। लेकिन वो आलिम बनने की बजाय वो ख्वाहिश नफ्स का जब बंदा बना तो अल्लाह ने भी उसे गुमराही की तरफ फेंक दिया। नंबर तीन, व खतम अला समही व कल्ब ही व जाला अला बसर ही गिशावा, और उसके दिल और कानों पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब यहां पे गुमराही में फेंकने की मजीद तफसील बताई जा रही है। ये वो वही बात है जो आप सूरत अल बकरा में भी पढ़ चुकी हैं, आयत नंबर 7 में, सुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजेउन। अब यहाँ पे भी इसके बारे में बताया जा रहा है कि उनके पास जो है कान तो हैं, वो दुनिया की सारी बातें सुनते हैं लेकिन हक बात नहीं सुनते। उनके पास दिल तो है, दिल दुनिया की मोहब्बत में धड़कता है लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में, आखरत की मोहब्बत में नहीं धड़कता। वो आंखों से दुनिया की तमाम चीज़ें देखते हैं लेकिन वो कायनात में बिखरे हुए दलाइल नहीं देखते, वो हदायत को नहीं पढ़ते, वो हदायत की तरफ नहीं आते। तो ये कौन लोग हैं कि जिनके कानों पर, दिल पर मोहर है और आंखों पर पर्दे डाल दिए गए हैं? इसकी वजह क्या है? ख्वाहिशात नफ्स की पूजा। तो ख्वाहिशात नफ्स की पूजा की वजह से अल्लाह ताला ने कबूल हक की सलाहियत इनसे छीन ली है। फमई यह दी ही मिम्बादिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक सवाल रखा है, अल्लाह के बाद अब और कौन है जो उसे हदायत दे? कुरान के बाद और क्या चीज़ है कि जिससे इनको हदायत मिल सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बाद और क्या चीज़ है कि इन्हें हदायत मिल सके? तो यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज़ है, क्योंकि अहले मक्का कहते थे कि दुनिया की ज़िंदगी ही पहली और आखिरी ज़िंदगी है, इसके बाद और कोई ज़िंदगी नहीं है। वो कहते थे ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करनी है, और यहूदी भी ऐसे करते थे, इसलिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला पूछते हैं, लोगों बताओ अल्लाह के बाद अब और कौन है जो उसे हदायत दे दे? अफला तज़क्करून, क्या तुम लोग कोई सबक नहीं लेते? क्या तुम लोगों को कोई समझ नहीं आती? वक़ालू, और ये लोग कहते हैं, माहिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया, कि ज़िंदगी बस यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है। माहिया नहीं है इल्ला मगर हयातुन दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी, कि जो भी ज़िंदगी है बस ये दुनिया की ज़िंदगी है। नमूतु, यही हमारा मरना है, व नहया, और यही हमारा जीना है। तो जो आखिरत का इनकार करते हैं वो दुनिया की जिंदगी को अपना ओढ़ना और बिछोना समझते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी है बस दुनिया के अंदर है। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और गर्दिश अयाम के सिवा कोई चीज़ नहीं जो हमें हिलाक करती हो। दहर किसे कहते हैं? दाल हा रॉ। दहर तवील जमाने को कहते हैं। सूरत दहर भी है ना, सूरत दहर। और दहर जो है ये तवील जमाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दहर का लफ्ज़ गलबे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, गलबे के लिए। सूरत दहर। हल अता अलल इंसानी हीनु मिन दहरी लम यकुन शैअ मस्कूरा। तो दहर के मानी हैं इब्तदाई कायनात से इख्तिताम तक का ज़माना। दहरिया किसे कहते हैं? जो कायनात की तख्लीक का कायल ही ना हो। तो जो लोग आखिरत के मुनकिर थे वो ये कहते थे कि बस ये दुनिया की जिंदगी ही पहली और आखिरी जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं। और दुनिया के अंदर जो मौत और जिंदगी का सिलसिला है महज ये जमाने की गर्दिश का नतीजा है। महज बस ये जमाने की गर्दिश है। तो इस तरह वो लोग जो है वो इनकार करते थे कि हम मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। तो यहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका ये कहना कि हमें नहीं कोई मौत देता मगर जमाना, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें कोई मारता नहीं है मगर जमाना, यानी जमाने की गर्दिश से हमें मौत आ जाती है कि जमाना गुजरने के साथ साथ जब जिस्मानी कुव्वतें खर्च होती जाती हैं तो मौत वाकया हो जाती है। तो कहते थे कि बस यही जिंदगी है, इसके बाद कोई और जिंदगी नहीं होगी। इसका अल्लाह ताला ने जवाब दिया है, वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, दरहकीकत इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं है। इनहुम इल्ला यजुन्नून, ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनका ये कहना कि इस जिंदगी के बाद दूसरी कोई जिंदगी नहीं है तो ये इनका गुमान है, ये महज गुमान की बिना पर ये कहते हैं। इनहुम इल्ला यजुन्नून। अब आप देखें कि जैसे बाज लोग जमाने को बुरा कहते हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम मुझे तकलीफ पहुंचाता है, जमाने को बुरा भला कहता है। हालांकि जबाना जमाना बजाए खुद कोई चीज़ नहीं, मैं खुद जमाना हूँ, मेरे ही हाथ में तमाम इख्तियारात हैं, रात दिन में भी मैं ही फेरता हूँ। इसे अल-बुखारी ने रवायत किया है, यानी मैं ही रात और दिन को फेर कर लाता हूँ, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। तो ये किसके पास है? ये अल्लाह के पास है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनके इस नज़रिए को रद्द किया है। वो जो ये कहते थे कि बस खुद ही बस ऐसे ही हमें जो है वो वक्त के गुजरने पर मौत आ जाएगी और हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे और ज़माने को बुरा भला कहते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़माना तो मैं खुद हूँ। आयत नंबर 25, वाइजा तुतला अलेहिम आयातुना बय्यिनात, फरमाया और जब हमारी वाज़े आयात इन्हें सुनाई जाती हैं, यानी ऐसी आयात जिनमें आखरत के दलाइल हैं, मजबूत दलाइल, क्योंकि आखरत का होना तो ऐन हिकमत और इंसाफ का तकाजा है ना, तो जब हमारी वाज़े आयात इन्हें सुनाई जाती हैं, मा काना हुज्जा तो हम, तो नहीं होती इनकी हुज्जत, तो इनकी जो हुज्जत होती है, इनके पास कोई और हुज्जत नहीं होती मगर ये इल्ला, मगर ये कि अनकालू, वो कहते हैं ई तू बी आबाइना इन कुंतुम स्वादिकीन, के उठा लाओ हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। कि अगर तुम ये कहते हो कि मौत के बाद दूसरी जिंदगी होगी तो तुम्हें लाजमन कब्र से जो है हमारे बाप दादा को जिंदा करना होगा। और वो हमारे बाप दादा जो कई साल पहले फौत हो गए थे, अगर तुम उनको जिंदा करके ले आओ हमारे सामने, फिर तुम इस दावे में सच्चे हो। अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है, कुल कह दीजिए अल्लाह युहयीकुम, कि वो अल्लाह ही है जो तुमको जिंदगी बख्शता है, जिंदगी देता है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुम्हें मौत देता है। ये जो तुम कहते हो ना कि मौत तो जमाने के गुजरने से हमें खुद ही आ जाती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं खुद ब खुद मौत वाकया नहीं होती, अल्लाह तुम्हें जिंदगी देता है और अल्लाह ही तुम्हारी जिंदगी को मौत पे तब्दील कर देता है। सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल कयामती, फिर वही तुमको कयामत के दिन जमा करेगा। ला रैब फीही, जिसके आने में कोई शक नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो वो ये कहते थे ना कि हमारे बाप दादा को उठा लाओ अगर तुम इस बात पर जो है वो यकीन रखते हो कि कयामत आएगी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा को मैं दलील के तौर पर उठा कर नहीं लाऊंगा, बल्कि असल बात क्या है कि तुम सबको कयामत के दिन जमा किया जाएगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, मगर अक्सर लोग जो हैं वो जानते नहीं हैं। यानी बगैर दलील के ही कयामत के आने का इनकार करते हैं। तो इन आयात की रोशनी में आप भी अपना जायजा लें कि आपका मामला क्या है। आप अपने कानों से, अपने दिल से, अपनी आंखों से क्या इस्तेमाल करती हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा तो नहीं बनाया, क्योंकि खुदा तो वही होता है जिसकी बंदगी की जाती है, जिसका कहना माना जाता है। नंबर तीन, आप कहीं ज़माने को बुरा तो नहीं कहती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है कि ज़माने को बुरा ना कहो, क्योंकि ज़माना दरअसल वो कुव्वत और कुदरत है जो अल्लाह ताला ही के पास है। तो जब कोई ज़माने को बुरा कहता है, दरहकीकत अल्लाह को बुरा कहता है। ज़माने के अंदर जो कुछ भी जो है वो अफ़ाल ज़हूर पज़ीर होते हैं, अल्लाह की कुदरत और इरादे से वो अमल में आते हैं। तो इसलिए जो है वो ज़माने को बुरा भला कहना इससे मना किया गया है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 27, वलिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्थ, ज़मीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही की है। व योम तकुमु साअतु योम इज़ यखसरुल मुब्तिलून, और जिस रोज़ क़यामत की घड़ी आ जाएगी उस दिन जो बातिल परस्त लोग हैं वो खसारे में पड़ जाएंगे। आप देखिए कि आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं कि वो जो शिर्क करने वाले हैं वो समझते हैं कि कयामत के दिन उनके बुत जो हैं, उनके माबूद जो हैं, वो उनको अल्लाह की पकड़ से बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसी ख्वाहिशात रखने वाले सब खसारे में होंगे, क्योंकि असल बादशाही जो आसमानों और ज़मीन की है वो अल्लाह की है। और जब वो कयामत की घड़ी आ जाएगी तो इस तरह का बातिल अकीदा रखने वाले लोग जो हैं वो खसारे में पड़ जाएंगे, फिर उन्हें वहां पे कोई फायदा नहीं होगा। तो वो लोग जो कट कट हुजतियां करते थे और बहसें करते थे, उसकी वजह क्या थी? वो ये समझते थे कि वहां पे उनके माबूद और उनके बुत जो हैं वो उनकी मदद कर देंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनके इस गलत नजरिए का रद्द किया है। अब आप देखिए कि आयत नंबर 28 और आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदाने हशर का हौलनाक मंजर पेश किया है कि अदालते इलाही का मंजर क्या होगा। व तरा कुल्ला उम्मतिन जाथिया, उस वक्त तुम हर गुरोह को घुटनों के बल गिरा हुआ देखोगे। कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, हर गुरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नामाए अमाल देखे। तुदा, उसको पुकारा जाएगा, इला किताबिहा, उसके नामाए अमाल की तरफ। फिर उसे कहा जाएगा अलयौम तुजज़ऊन मा कुन्तुम तअमलून, आज तुम लोगों को उन अमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम दुनिया में करते रहे। आयत नंबर 28 में तीन बातें कही गई हैं। पहले ये कि हर ग्रोह को तुम घुटनों के बल गिरा हुआ देखोगे। जासिया किसे कहते हैं? इसका मादा है जासिया का मादा है जीम सा वो। इसके मानी है जानू पर बैठना। आप देखें कि बैठने के लिए कुरान में एक तो जलसा आया है, दूसरा कादा आया है, और तीसरा लफ्ज है जो कि जसो है, जासिया। जासिया के मानी है घुटनों के बल बैठना। जैसे कोई आदमी अपने दोनों जानुओं पर बैठे, गुलाम, महकूम, मुजरिम अपने आकाओं और हाकमों के सामने फैसला सुनने के लिए दो जानू जब बैठते हैं, उसको कहा जाता है। अब यहां पर हर ग्रोह फैसला सुनने के लिए जो दो जानू बैठेगा उसकी मंजर कशी की जा रही है, घुटनों के बल बैठना। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जुसू इस तरह बैठने को कहते हैं जिसमें जमीन पर सिर्फ घुटने और पांव के पंजे टिक जाए। इस तरह का बैठना जो है ये खौफ की वजह से होगा। और बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि जासिया के मानी महज बैठने के हैं, जैसे कि नमाज में बैठते हैं, यानी। और आप देखें कि ऐसी कैफियत में इंसान बहुत देर तक नहीं बैठ सकता। तो एक राय क्या है सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह की, कि खौफ और दहशत से बैठना जमीन पर इस तरह के घुटने और पांव के पंजे टिक जाए। दूसरी राय क्या है? महज बैठना जैसे कि नमाज में बैठा जाता है। वतरा और तुम देखोगे कुल्ला उम्मतिन जासिया, के हर ग्रोह जो है वो घुटनों के बल बैठा हुआ होगा। हर ग्रोह को घुटनों के बल बैठा हुआ देखोगे, यानी ज्यादा राय यह है कि खौफ व दहशत से बैठने की यह कैफियत होगी कि बड़े बड़े मुजरिम भी उनकी अकड़ खत्म हो जाएगी और आजजी के साथ सब घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। कुल्लो उम्मतिन के क्या मानी है? मोमिन, काफिर, नेक, बुरे, उस दिन सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे। इला किताबिहा, किताबिहा के क्या मानी है? किताब जो है ये उस रजिस्टर को कहते हैं, उस दफ्तरे आमाल को कहते हैं जिसमें ग्रोहों और उम्मतों के तमाम आमाल का रिकॉर्ड होगा। सूरत मुतफ़िफ़ीन में अल्लाह ताला ने वहाँ पे सिज्जीन और इलियीन का जिक्र किया है। सूरत अज़ुमर आयत 69 में फरमाया, वुदिया अल-किताबु वजीअ बिन्नबीयीना वश्शुहदा, अमाल नाम में सामने लाए जाएंगे, नबियों और शहदा को गवाही के लिए पेश किया जाएगा। और ये अमाल नामे क्या करेंगे? इंसानी जिंदगी का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करेंगे, कोई कमी बेशी नहीं होगी। हत्ता के जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना, आंखों की खयानत, अगर किसी ने किसी को देखकर आंख ही मारी होगी, आंखों से किसी का मजाक उड़ाया होगा, आंखों की पलकों से, तो वो भी नामाए माल में लिखा हुआ होगा। किसी को देख के हंसे होंगे, मसलन आप किसी के लिबास को देखती हैं, बहुत ही लंबा है तो आप हंस पड़ती हैं, बहुत ही छोटा है तो आप हंस पड़ती हैं, या ये कि किसी का बहुत ही चुस्त है, या आउट ऑफ फैशन कपड़े किसी ने पहन लिए, आप शादी पर गई हुई हैं और आप जो है वो उसका हंसी मजाक करती हैं, तो ये सारी हर छोटी से छोटी हर बड़ी से बड़ी बात उसके अंदर दर्ज होगी। फिर इसी तरह सूरत अल कहफ आयत 49 में आप पढ़ चुकी हैं, माल हाजल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, के इंसान कहेगा ये कैसा अमाल नामा है जिसने छोटी बड़ी कोई चीज भी नहीं छोड़ी, ये सब कुछ इसके अंदर दर्ज है और इंसान उस दिन बड़ा ही परेशान होगा। फिर आप देखें कि सूरत अल-फजर है तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब जहन्नुम को इंसानों के सामने लाया जाएगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त इंसान जो है कहेगा कि या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, काश कि मैंने अपनी अगली ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि हर शख्स को उसका नामा अमाल दिखाया जाएगा और कहा जाएगा अल यौम तुजज़ऊन मा कुंतुम तअमलून, आज तुम्हें उन अमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम दुनिया में करते रहे। हाजा किताबुना, ये है हमारा तैयार कराया हुआ अमाल नामा, ये रिपोर्ट हमने तैयार करवाई है, ये वो अमाल नामा है जो हमारे फरिश्तों ने लिखा है। हाजा किताब होना, ये हमारा तैयार करदा अमाल नामा है। यन्तिकु अलैकुम बिल हक, जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक गवाही दे रहा है, हक के साथ तुम पर बोल रहा है। नुतक, नुतक जो है ये बोलने को कहते हैं, बात करने को कहते हैं। इंसान नातिक, इंसान क्या करता है, बातें करता है ना। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये अमाल नामा जो है ये तुम पर आज बोल रहा है, बयान कर रहा है तुम्हारे आमाल को। इन्ना कुन्ना नस्तन सिखु मा कुन तुम तामलून, जो कुछ भी तुम करते थे बेशक हम उसे लिखवाते जाते थे। अब आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस इतना ही नहीं है कि तुमने आमाल किए और फिर वो ख़त्म हो गए, बल्कि क्या है कि नस्तन सिखु, नून सीन खा, किताब की कॉपी करना, नकल करना, लिखवाना, नस्ख एक तहरीर से दूसरी तहरीर जो है वो नकल करवाना। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमारे इल्म के अलावा फरिश्ते भी हमारे हुक्म से तुम्हारी हर चीज़ को नोट करते थे और महफूज करते थे और हम उसे लिखवाते जाते थे। तो यहाँ पे असल में अल्लाह ताला ने जो अपनी तरफ निस्बत दी है वो ये बताने के लिए कि हिसाब किताब जो है ये बड़ा एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक ठीक, ज़रा बराबर नेकी छुपी नहीं है, ज़रा बराबर बदी भी गायब नहीं है, सारे अमाल नामे इस दफ्तर के अंदर जो है वो दर्ज हैं। जैसे आप कहती हैं कि आप पेपर पर कुछ लिखती हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने जो याद किया होता है, जो आपको आता होता है, वो भी आप बाज़ औक़ात भूल जाती हैं, आपका ओरल एग्ज़ाम है आप उसको कहना भूल जाती हैं, है ना, और अल्लाह को पता है कि आपको कितना आता है। इसी तरह यानी आप जो कुछ कर रहे हैं, मैं जो कुछ कर रही हूँ, तमाम दुनिया के लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला सारा का सारा जो है उसको रिकॉर्ड करवाते जा रहे हैं। और ये नसख जो है ये ज़रूरी नहीं कि कागज़ कलम और स्याही से ही किया जाए, कई तरीक़े हैं, जैसे कि अल्लाह ताला सूरत कहफ में कहते हैं कि लोग कहेंगे ये कैसी किताब है, ना छोटी कोई बात इसने छोड़ी है और ना ही बड़ी बात, क्यों, अल्लाह ताला कहते हैं हर चीज़ को इसने गिन रखा है, यानी कि नामा माल में हर चीज़ लिखी गई है। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है। अब बात है नेक अमल करने वालों की, फ़अम्मल लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाती, फिर जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल करते रहे थे, फ़युदख़िलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमते, उन्हें उनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा। सुबहानहु, सुबहानअल्लाह, उनका रब उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। तो अल्लाह का अपनी रहमत में दाखिल करना, इसके क्या मानी हैं? मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके मानी हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यहाँ पर जो है खुशखबरी दी जा रही है, क्योंकि ईमान और अमले सवाले का नतीजा जन्नत है। हदीस में है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला जन्नत से कहेगा, अंती रहमती अरहमु बिकी मन अशा, ये सही बुखारी की रवायत है, कि तू मेरी रहमत है, तेरे जरिए से मैं जिस पर चाहूँगा रहम करूँगा। तो रहमत के मानी जन्नत के हैं। ज़ालिका हुवल फौज़ुल मुबीन, और यही सरीह कामयाबी है। वअम्मल लज़ीना कफरू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया था उनसे कहा जाएगा, अफलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या तुम्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाई नहीं जाती थी, फस्तकबरतुम, फिर तुमने तकब्बुर किया, तुमने घुमंड की वजह से जो है आयात का इनकार किया और अल्लाह की अतात ना की, अल्लाह के बंदे ना बने। वकुन तुम कौम मुजरिमीन, और तुम तो मुजरिम कौम बनकर जिए। वाइजा कीला, और जब उनसे कहा जाता था इन्ना वाद अल्लाह हक्कुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा है। वस्सात उला रे बफीहा, और क़यामत के आने में कोई शक नहीं। अस्सातु क़यामत, और क़यामत के आने में कोई शक नहीं। कुल तुम कहते थे मा नदरी मस्सा, हम नहीं जानते कि क़यामत क्या होती है। इन्ना जुन्नु इल्ला जन्नन, हम तो बस एक गुमान रखते थे। इन्ना जुन्नु, नहीं हम ख्याल करते थे। इल्ला जन्नन, मगर एक गुमान। वमा नहनु बे मुस्तैकिनीन, हमको यकीन नहीं था, और नहीं साथ हम इसके यकीन करने वाले। बे मुस्तैकिनीन का रूट क्या है? या काफ नून, और क्या मानी होते हैं इसके? यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मुस्तैकिनीन है ना, बे मुस्तैकिनीन, तो इस तयकन जो है इसमें काफ़ी हरूफ का इजाफा है ना, अलिफ सीन ता, किसी बात का तजुर्बा के बाद आहिस्ता आहिस्ता यकीन होना, किसी बात को पूरी तरह समझना और फिर उस पर यकीन होना। तो इसका दर्जा मार्फत से, जानने से ऊपर है। जैसे मालूम चीज़ पर सीने और दिल के सुकून और ठंडक का नाम यकीन है। तो कहेंगे कि हमें बस एक गुमान सा था, हमें यकीन नहीं था। वह बदा लहम सैयात मा अमिलू, उस वक्त उन पर उनके अमाल की बुराइयां खुल जाएंगी। वह बदा लहम, और जाहिर हो जाएंगी इनके लिए, लहम सैयाती, जाहिर हो जाएंगी इनके लिए सैयातु बुराइयां, मा अमिलू जो उन्होंने की थी। वह हाका बहिम, और घेर लेगा इनको, मा कानू बही यस्ताज़ेउन, जो वो मजाक किया करते थे, और वो उस चीज़ के फेर में आ जाएंगे जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इंसान के जो आमाल होंगे उसके मुताबिक ही जो है वो उनका अंजाम होगा। और यहाँ पर जो है आप इस बात को याद रखें कि अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी में इंसान के रवैये भी पेश कर रहे हैं और उनकी जज़ा और सज़ा भी सामने ला रहे हैं, कि अपने किए हुए के वो फेर में आ जाएंगे। वकील अल्यौमा, और उनसे कह दिया जाएगा, ननसाकुम, आज हम तुमको भुला देंगे। उनसे कहा जाएगा आज हम तुमको उसी तरह भुला देते हैं, कमा नसी तुम लिका यौम कुम हाजा, जिस तरह तुम इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। वमा वाकुम नारू, तुम्हारा ठिकाना तो अब दोजक है। वमा लकुम मिन नासिरीन, और कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सख्त सरजनश की है। यहाँ पे अल्लाह ताला पहले से ही लोगों को डरा रहे हैं कयामत के दिन की हौलनाकी से, हशर के मैदान की रुसवाई से, कि कितना चीखो चिल्लाओ आज तुम्हारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। तुम्हें अपनी दौलत पर, अपनी सरदारी पर, अपनी हुकूमत जाहो मनसब पर बड़ा नाज था, आज कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वमा लकुम मिन नासिरीन, तुम्हें अपने खुदाओं पर, माबूदों पर, शुरका पर बड़ा भरोसा था, अब वो तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं। ज़ालिकुम बि अन्नकुम मुत्तखज़तुम आयातिल्लाही, ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ, बि अन्नकुम, इसलिए कि तुम, इत्तखज़तुम, तुमने पकड़ लिया था, बना लिया था, आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात को, हुजुवन, मजाक। वगर्रतकुमुल हयातु दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने तुम्हें धोखे में मुब्तला किया था, कि तुम दुनिया में अमीर थे, दौलतमंद थे, तो तुमने सोचा कि आखिरत में भी तुम ही कामयाब ठहरोगे। तुम्हारी दौलत की वजह से, तुम्हारे दुनिया में कामयाबी की वजह से तुमने अपने अकाद और अमाइल तुमने अपने अकायद और अमाल को ख़राब कर लिया, उनको ठीक करने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तो ये है कि वगर्रतकुमुल हयातु दुनिया फलयौमा ला युखरजूना मिन्हा, लिहाजा आज ना ये लोग दोजख से निकाले जाएंगे, वला वला हुम युस्तातबून, और ना इनसे कहा जाएगा कि माफ़ी मांग कर अपने रब को राज़ी कर लो। युस्तातबून आयन ताबा, इसके मानी होते हैं उज़र कबूल करना, अतबा ये जो है वो ज़विल अज़दाद में से भी है। अतबा जैसे किसी पर मलामत करना, गुस्सा करना, अताब करना। और इसके अलावा ये लफ्ज़ जो है नाराज़गी को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कि जैसे किसी की मिन्नत करके, तौबा करके उसको राज़ी कर लिया जाए। और असल में तौबा तो अल्लाह से की जाती है ना, कि इंसान अल्लाह से तौबा करके अपने रब को राज़ी कर ले। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वलाहुम युस्तातबून, और उनसे कहा नहीं कहा जाएगा कि माफ़ी मांग कर अपने रब को राज़ी कर लो। अब आप देखिए कि उनके जरायम क्या थे। नंबर एक, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाना। नंबर दो, दुनिया के फरेब और गुरूर में मुब्तिला रहना। और ये दो ऐसे बड़े गुनाह थे कि जिसकी वजह से उनको जहन्नुम का मुस्तहिक बना दिया गया। और ये दुनिया का जो फरेबो गुरूर है, हदीस में आता है अल्लाह अपने बाज़ बंदों से कहेगा, क्या मैंने तुझे बीवी नहीं दी थी? क्या मैंने तेरा इकराम नहीं किया था, यानी इज्जत नहीं दी थी? क्या मैंने घोड़े और बैल वगैरह तेरी मातहती में नहीं दिए थे? तू सरदारी भी करता और चुंगी भी वसूल करता रहा। वो कहेगा, हाँ ये तो ठीक है मेरे रब। अल्लाह ताला इससे पूछेगा, क्या तुझे मेरी मुलाकात का यकीन था? वो कहेगा, नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, फल यौम अनसा का कमा नसीतनी, बस आज मैं भी तुझे जहन्नुम में डालकर भूल जाऊंगा जैसे तू मुझे भूला रहा। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। तो अल्लाह ताला भी उस दिन जो है वो भूल जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? ये जो वहाँ के हालात पेशगी हमारे सामने रखे जा रहे हैं, तो इनका मकसद ये है कि मौजूदा दुनिया की ज़िंदगी में हम आखिरत की तैयारी कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला जहन्नमियों से नफ़रत की वजह से मुंह फेर लेगा। और उस दिन एक्सक्यूज़ करके, उज़र पेश करके अल्लाह को राज़ी नहीं किया जा सकेगा। तो तौबा करना और माजरत ये दुनिया में हो सकता है, मैदाने महशर में तो सिर्फ हिसाब किताब होगा। फलिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाती व रब्बिल अर्दी रब्बिल आलमीन, बस तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो ज़मीनों और आसमानों का मालिक है और सारे जहान वालों का परवरदिगार है। सारी बहस का खुलासा सामने रखा जा रहा है कि वो अल्लाह जो के आसमान और ज़मीन सबका रब है, जो सारे जहानों का रब है। तो जब सबका एक रब है तो तुमने शिर्क कैसे कर लिया? फिर अल्लाह की रबूबियत का इनकार करके तुमने देवी और देवता कैसे बना लिए? तुम एक अल्लाह की किबरियाई का इकरार क्यों नहीं करते? तो आयत नंबर 36 में पूरी सूरत का खुलासा सामने रखा गया है। तो अलहम्द से मुराद क्या है कि अल्लाह की तारीफ भी करना और अल्लाह का शुक्र भी करना, अल्लाह की बंदगी करना। वल्लहुल किब्रियाउ फिस समावाती वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम, जमीन और आसमानों में बड़ाई उसी के लिए है और वही जबरदस्त और दाना है। अब आप देख लें कि सूरत जासिया के इब्तदा में क्या अल्लाह की सिफात थी? दूसरी आयत, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीज़ुल हकीम, और आखिरी आयत, वहुवल अजीज़ुल हकीम। तो सारी कायनात का जब खुदा एक है तो वल्लहुल किब्रियाउ, तो असल मालिक और बादशाह भी एक है। यानी खालिक मालिक जब एक है तो किसी और के लिए बड़ाई की और किब्रियाई की गुंजाइश नहीं है। तो फिर सबको अल्लाह के आगे सरे अतात खम करना चाहिए। फिर इस सिलसिले में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हदीस पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल अजमतु इजारी वल किब्रियाउ रिदाई, कि किब्रियाई मेरी चादर है और अजमत मेरा इजार बंद है। फमन नजानी, लिहाजा जो शख्स जो है मुझसे छीनना चाहेगा, वाहिदा मिनहुमा, इन दोनों में से किसी चीज को, लिहाजा जो शख्स इन दोनों में से किसी चीज को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, अस्कन तो हूँ नारी, मैं उसे उठाकर आग में फेंक दूंगा। तो किबरियाई और तकब्बुर ऐसी सिफत है जो सिर्फ अल्लाह को जेब देती है, एक मोमिन कभी मुतकब्बिर नहीं हो सकता। तकब्बुर और ईमान एक दूसरे की जिद हैं जो एक इंसान के अंदर जमा नहीं हो सकती। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है, जिसके रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्जत परवरदिगार की इजार है और बुजुर्गी इसकी चादर है, जो कोई उसे अल्लाह से, यानी अल्लाह कहता है, जो कोई मुझसे इसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे ज़रूर अजाब दूंगा। तो सारी बात का निचोड़ क्या है कि अल्लाह ताला गालिब है, कोई अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकता, अल्लाह हकीम है। दुनिया में अल्लाह ने लोगों को सरकशी के लिए मोहलत दी है, लेकिन लोग इस गलत फहमी में मत रहें कि वो अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएंगे। एक ख़ास वक्त तक ये मोहलत है, और जब वक्त आएगा तो ये मोहलत जो है वो छिन जाएगी। तो सूरत अल जासिया से हमारे लिए अमल के क्या पैगाम निकलते हैं, अमल के कौन से उसूल हमारे सामने आते हैं? इसमें पहला उसूल ये है कि आप अपना जायज़ा लें, मुहासबा करें कि मेरा खुदा कौन है, मेरी ख्वाहिशात नफ्स, या फिर वाकई मैं एक अल्लाह की बंदगी करती हूँ। तो अपना मुहासबा करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इलामा इकबाल ने कहा था, या बंदाए खुदा बन या बंदाए ज़माना। तो फैसला करना होगा कि मैं किसको अपना खुदा बनाना चाहती हूँ। नंबर दो, ये जो मेरे जिस्म के अज़ा हैं, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा दिल, तो इनका सही इस्तेमाल करना, इनसे हदायत हासिल करना। नंबर तीन, कुरान मजीद से दोस्ती करना, उसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाना। नंबर चार, ज़माने को बुरा भला न कहना। नंबर पाँच, इस बात पर यकीन करना कि मुझे मरना है और अल्लाह को हिसाब देना है। नंबर छः, जो भी गलतियाँ की हैं, जो गुनाह किए हैं, वो जो छुप छुप के, जो सबके सामने किए, जो छोटे हैं जो बड़े हैं, आज हम जो हैं उनसे, अल्लाह से उनके लिए इस्तग़फ़ार करें, आज हम अल्लाह के सामने उज़र पेश करें और फिर अपने अमलों को दुरुस्त कर लें। और ईमान लाएं और अमले सवाले करें, और दुनिया की ज़िंदगी हमें किसी धोखे में ना डाल दे। आपने सूरत अल जासिया के जो आपने पहला सबक इसका पढ़ा, आयत नंबर एक से लेकर 22 तक, तो आपने जो है आयत नंबर 21 के तहत जो है वो अकवाल पढ़े थे। आयत नंबर 21 के तहत बहुत ही झंझोड़ने वाले, गफलत की ज़िंदगी पर पानी के छींटे देने वाले, हज़रत रबी रहमतुल्लाह अलैह का एक तहज्जुद की नमाज में सूरत अल जासिया की आयत नंबर 21 का पढ़ते रहना, और इतना पढ़ना, इतनी तकरार के पढ़ते पढ़ते यहाँ तक कि सुबह हो गई। और आयत में क्या था कि गुनाह करने वाले और ईमान लाने वाले और अमले सवाले करने वाले, इन दोनों की दुनिया की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, तो आखरत में अंजाम इनका एक जैसा नहीं हो सकता। तो हज़रत रबी रो रहे थे कि पता नहीं मेरा अंजाम क्या होगा, मैं किन लोगों में शामिल होऊंगा। हज़रत फजल फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने नफ्स को मुखातिब करते हुए फरमाया करते, काश मुझे दुनिया में पता चल जाए कि इन दो फरीकों में से मैं किस फरीक में शामिल होऊंगा। और हमें भी जो है वो दुनिया की ज़िंदगी में ये फ़िक्र करनी चाहिए कि मेरा शुमार जो है वो किन लोगों में होगा। अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राज़ी हो जाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे और दुनिया में रहते हुए हमें आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। आखिरत की तैयारी वही करते हैं जिन्हें इस बात पर यकीन है कि मुझे मरना है और अल्लाह के सामने जाना है। और आखिरत पर ईमान जो है वो इंसान को सीरियस बना देता है, संजीदा बना देता है। आखिरत पर जो लोग ईमान रखते हैं फिर वो किबर नहीं करते, फिर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को कबूल करते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकाम नहीं देते, क्योंकि जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को सबसे बड़ा मकाम देते हैं, यानी हर बात में ये कहना मेरा दिल ये चाहता है, ये नहीं कि किसी भी बात में आप ऐसा कह दें, लेकिन कुछ लोगों की क्या आदत होती है, मेरा दिल ये चाहता है, मैं ये चाहती हूँ, मैं, तो ये क्या है कि अपनी बंदगी, अपनी पूजा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी बंदगी करो। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। हाय वो लोग थे कैसे वो लोग थे, छोड़ दी जिंदगी बंदगी के लिए। एक तू भी तो है एक मैं भी तो हूँ, हाय अफसोस हूँ छोड़ दी बंदगी जिंदगी के लिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुस्ने अमल करने वाला बनाए। कभी आह लब से निकल गई, कभी अश्क आंख से ढल गए, ये तुम्हारे गम के चराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए। तो मोमिन जो है वो बस अल्लाह की अतात और मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करता है, अल्लाह के खौफ में ज़िंदगी बसर करता है। रोता है तो रब को राज़ी करने के लिए, खुश होता है तो रब को राज़ी करने के लिए, और इसके अलावा उसे कोई गम नहीं होता। जुज़ ज़ौक तलब जुज़ शौक सफ़र, कुछ और मुझे मंजूर नहीं, ए इश्क बता अब क्या होगा, कहते हैं कि मंजिल दूर नहीं। और इस तरह हमारे 25 पारे मुकम्मल हो गए हैं। 25 पारे मुकम्मल होने के बाद अब क्या होना चाहिए, आइए अपने रब को राज़ी कर लें, आइए अपने रब को राज़ी कर लें और पुकारें फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाती व रब्बिल अर्दी रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रिया फिस समावाती वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका।